एक जुमला मैंने किसी का पढ़ा था, किसी साइकोलॉजिस्ट कह लें या सोशल साइंसेस के किसी एक्सपर्ट का वो था, उसने कहा जितना सोना इंसानी दिमाग से निकला है आज तक दुनिया की कानों से भी नहीं निकला। इसका मतलब ये हुआ कि जिस कदर कीमती इंसान है, और वो भी बाशऊर इंसान जिसका दिमाग सोना उगलता हो, उतनी ज्यादा कीमती ना कोई धात है ना कोई चीज है।
वाह,
एक ऐसी जगह होती है जहां यू कह ले मच्छरों की बस्ती हो, दलदली इलाका हो, गरीब से लोग हो, गर्मी ने उनके रंग झुलसा दिए हो, धूप ने उनकी स्किन झुलसा दी हो, गर्मी ने उनके रंग बदल दिए हो, इस सब के बावजूद भी अगर वहां के इंसानों को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया जाए, इंसानों को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो वो सिंगापुर बनता है। ये
अच्छा।
छोटा सा मुल्क है और दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में से है।
ऐसा ही।
वहां से ना तेल निकलता है ना पेट्रोल निकलता है, ऐसा कुछ नहीं निकलता। वहां इंसानी दिमागों से सोना निकला
अल्लाह अकबर।
और उससे वो मुल्क दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शामिल हो गया, और उसे पूरी दुनिया के अंदर एक मिसाल के तौर पे बयान किया जाता है।
ऐसा ही है।
दुनिया के चंद ममालिक वो हैं जो रकबे और कुदरती जो नेमतें हैं उनके एतबार से बड़े भरपूर हैं,
जी
बड़े रकबे वाले ममालिक हैं, आबादी भी है और वसाइल भी बेतहाशा उनकी ज़मीनों में हैं। अच्छा, उनकी अगर तरक्की है तो उसमें ये सारे फैक्टर्स मौजूद हैं, लेकिन कितने ममालिक वो हैं कि जिनमें इनमें से कुछ भी नहीं है।
ऐसे है।
दरिया वहाँ नहीं, बुलंदोबाला पहाड़ वहाँ नहीं, जंगलात वहाँ नहीं है, ज़मीन की मादनियात वहाँ नहीं है, और ना जाने कितनी ज़रूरी चीज़ें हैं वो वहाँ नहीं हैं। लेकिन इसके बावजूद ऐसे मुल्क दर्जनों की तादाद में हैं जो नहायत अमीर, नहायत खुशहाल, नहायत बुलंद रुतबा और नहायत बाइज्जत मकाम रखते हैं दुनिया में। कैसे? इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ कोई और वजह है, वो वजह है वहाँ के लोग।
सोने की कान नहीं है लेकिन दिमाग सोना गोल है।
दिमाग सोने के बोलते। तो वो क्या है कि उन्होंने अपने लोगों की तालीम तरबियत और फिर उस तालीम तरबियत की जेहत वो कि जो उनके मुल्क को फायदा दे।
सही।
जिस मुल्क में पेट्रोल नहीं है और वो अपने मुल्क वाले पूरे मुल्क को सिखा दे पेट्रोल कैसे निकालना है, तो क्या फायदा?
सही।
इसका मतलब ये हुआ कि उनको इसकी जगह वो सिखाओ जो उस मुल्क के एतबार से। तो अब वो चीज अगर उसे सिखा देंगे तो वो उसके एतबार से काम करेगा। तो जो मुल्क के लोग हैं, नौजवान हैं खास तौर पे, के तालीमो तरबियत के फेज से ये गुजर रहे होते हैं या इन्हें गुजरना होता है।
जी
बूढ़ा आदमी तालीमो तरबियत में नॉर्मली अब उसने नहीं गुजरना, ना उसने जो सीख लिया अब उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है,
ऐसा ही
ठीक,
है।
उसकी अपनी इफादियत, लेकिन ये तो जमाने के साथ चलते हुए पता नहीं क्या से क्या कर सकता है।
ऐसा
तो
ही।
सबसे पहले ये है कि नौजवानों की तालीमो तरबियत, सिर्फ तालीम नहीं सिर्फ तरबियत नहीं, तालीम और तरबियत दोनों,
दोनों
ये दोनों हो, और वो दोनों उस नहज पे हो जो उस मुल्क के कल्चर, उस मुल्क की रिवायात, उस मुल्क की अकदार, उस मुल्क की जरूरियात, उस मुल्क के फवायद, उस मुल्क के मुस्तकबिल के मंसूबे और इन सब चीजों को सामने रखे तालीम और तरबियत दी जाए।
सुभान अल्लाह।
मुल्क इस्लामी है और तालीम और तरबियत 100% मगरबी देखे, उनको दीन बेजार बना के अगर आप उस मुआशरे में इंजेक्ट करेंगे तो ये एक पैच होगा, ये एक पैवंद होगा जो उस लिबास के अंदर जैसे तैसे बिना टांकने की कोशिश की जा रही है। नहीं, आप उसको उसी के सारे उस बैकग्राउंड के एतबार से आप उसकी तरबियत करें तो ये पैवंद नहीं होगा, ये फूल होगा।
सुभान अल्लाह। डिजाइन होगा उस कपड़े में,
जो बंदा बड़े तरीके से अपने यहाँ पर लगा के बैठा होता है ना, ये
क्या
डिजाइन
बात,
बनेगा, ये पैमन नजर नहीं आएगा,
खूबसूरत।
ठीक है। नंबर दो, मटीरियलिज्म, मादियत परस्ती,
जी
कि मेरे दुनियावी मफादात मुझे हासिल हो जाएं, ये वाली जो सोच है ये सोच हुब्बुल वतनी को भी तबाह कर रही है।
ऐसे है।
इसीलिए लोगों के दिलों में वतन के बारे में अब वो जज्बात नहीं है जो पहले होते थे।
ऐसा है।
जब से ग्लोबलाइजेशन हुई है कि जी सारी दुनिया हमारा वतन है, और उसके नतीजे में ये हुआ कि हर बंदे के लिए वो जगह ज्यादा इंस्पायरिंग है, ज्यादा अट्रैक्टिव है, जहां उसकी सहूलियात और जरूरियात ज्यादा पूरी होती।
ऐसे ही
इसीलिए अब उसे वतन छोड़ने में इतनी तकलीफ नहीं है, अब उसके लिए वो वतन ज्यादा अजीज है जहां पर उसे वो सारी चीजें मिल रही हैं। तो हुब्बुल वतनी में इस मेटीरियलिज्म जो है इसने भी बहुत बड़ा अमल दखल रखा। दूसरी तरफ खुद हुब्बुल वतनी पैदा करने के एतबार से चूंकि इतनी कोशिश नहीं की गई, तो लिहाजा उसके नतीजे के अंदर भी उसी तरह का नतीजा निकला। तो तालीम, तरबियत, वतन की मोहब्बत और फिर उसकी बाकायदा प्लानिंग, फिर उस प्लानिंग के मुताबिक लेके चलना, फिर उस जुल्म और नाइंसाफी को ख़त्म करना कि जिसकी वजह से लोग वतन की मोहब्बत की बजाय दूसरी राह पे चल पड़ते।
सही।
एक आदमी ने पूरी मेहनत से पढ़ा, उसने हर इम्तिहान में टॉप नहीं किया तो बहुत A+ नंबर उसने लिए, लेकिन अब उसके बाद जब उसको नौकरी देने की बारी आई या उससे उस मुआशरे के अंदर कुछ हासिल करने की बारी आई और उसके लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए जाए, तो वो क्या करेगा? उसके दिन में कहाँ से जो है वो उस वतन के हवाले से कोई मोहब्बत या इस तरह के जज्बात होंगे? वो ये कहेगा मेरा तो इस्तेहसाल हुआ है, मेरे ऊपर तो जुल्म किया गया। तो ये एक पूरा पैकेज होता है।
सही।
ठीक है, लेकिन उसके अंदर बाहर हाल जितना कुछ भी होगा, जो मरकजी सरमाया होगा वो नौजवान ही होंगे।
ऐसा ही है,
यानी वो नहीं होंगे तो किसकी तालीम और किसकी तरबियत?
सही। ठीक
है, वो हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई हीरे जवाहरात आपके पास हैं, पॉलिश करना तो आपका काम है ना। अल्लाह ताला जिस जमीन में हीरे जवाहरात रखता है तो बेतहाशा रखे होते हैं, लेकिन अगर उसे कोई निकाल के पॉलिश नहीं करता तो वो पत्थर के टुकड़े।
ऐसा ही।
अब वो पत्थर के टुकड़ों को हीरा बनाना और उसे उसके असल मकाम पे जड़ देना, यानी कि वो कंधा कर देना, उसे लगा देना, ये काम है जौहरी का, ये काम है उन लोगों का कि जो ये सारा कुछ करने वाले। तो यूं कह लें कि हमारे वतन में नौजवान अगर ज्यादा हैं तो इसका मतलब है कि हमारे मुल्क में हीरे जवाहरात ज्यादा है।
माशाल्लाह।
तो लिहाजा तालीम और तरबियत, नौजवानों की सोच की तब्दीली, अच्छी सोच, और उसके साथ फिर उनको जायज मकाम देना और इसके लिए मुस्तकिल कुछ ना कुछ करते रहना, ये वो चीजें हैं कि जिससे इस सरमाए को हम इस्तेमाल कर सकते।